राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा अनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, श्री हरिनाम संकीर्तन के अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम आज श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 9 ग्यारहवा अध्याय श्लोक संख्या 23 पढ़ रहे। पुरुषो रामचरितम् श्रवणेरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्म बंधेर विमुच्यते। पुरुषो रामचरितम् श्रवणेरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्म बंधेर विमुच्यते। पुरुषो रामचरितम् श्रवणेरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्म बंधेर्विमुच्यते।
पुरुषो रामचरितम् श्रवणेरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्म बंधैर्विमुच्यते। पुरुषः कोई व्यक्ति रामचरितम् भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित
कथा को। ये यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर हिंदी है, इसलिए मैं यही श्लोक यहाँ पे रहने दूंगा। श्रवणे कानों से उपधारयन श्रवण करके आनृशम से पर ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। राजन हे राजा परीक्षित, कर्म बंधे कर्म के बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्मबंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य, इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अतएव वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। चूंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके सर्वोच्च रक्षक है, अतएव वह सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसके रक्षा करता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए, और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। दूसरों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवद्धाम जाने का पात्र बन जाता है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। आज हमारे प्रातःकालीन भागवत कक्षा में हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और सर्वप्रथम मैं आप सभी वैष्णव के आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विशेष करके श्रीमान राधेश्याम प्रभु। एक वैष्णव गीत है, उसमें बताया जाता है कि कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो खास करके मेरे स्वयं के आध्यात्मिक भक्तिमय जीवन के प्रयास में मैं देखता हूँ कि मंदिर के एक नेता के रूप में, मंदिर के एक अध्यक्ष के रूप में, एक शिक्षा गुरु के रूप में श्रीमान राधेश्याम प्रभु ये सभी भूमिकाएं हम सभी भक्तों के लिए निभा रहे हैं। तो आप सभी से यही आशीर्वाद की कामना है कि मैं ईर्ष्या से मुक्त हो जाऊँ, क्योंकि ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बड़ा जोर दे के करते हैं कि एक भक्त को ईर्ष्या से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी 2 तारीख को श्री रामनवमी महामहोत्सव है, तो हम ये ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए थोड़ा राम कथा रामचरित्र श्री राम के रूप का वर्णन श्री राम के गुणों का वर्णन सुनने का प्रयास करेंगे। के लिए आप इसको कवर करें। तो प्रभु श्री रामचंद्र के गुणों के बारे में जब वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, तो ये एक श्लोक में सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा जो बड़ा प्रेरणादायी है एक वैष्णव को अपने जीवन में उतारने के लिए। ये अयोध्या कांड में प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या 12 है। वाल्मीकि प्रभु रामचंद्र के आचरण के बारे में लिखते हैं। वे कहते हैं, शील रुद्धेर ज्ञान रुद्धेर वयो रुद्धेश्च सज्जनै कथयन् नास्त वै नित्यम अस्त्र योग्यां तरेष्वपि। कि जो प्रभु रामचंद्र थे उनका व्यवहार कैसा था, हालांकि वो क्षत्रिय परिवार के थे, हालांकि उनका ये दायित्व था, जिम्मेदारी था कि क्षत्रियों के गुण और कार्य वो निभाए, मगर उनकी एक बहुत विशेषता थी। वो क्या थी, अपने अस्त्र शस्त्रों के पाठक्रम में भी वो अपना समय निकालते थे और 3 प्रकार के लोगों से हमेशा संग करते थे। एक है शील रुद्ध, यानी जो चरित्र में उनसे बढ़कर है। दूसरे है ज्ञान रुद्ध, जो ज्ञान में उनसे बढ़कर है। और एक है गुण रुद्ध। कुछ आचार्य ऐसे भी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र ये सभी गुणों के आधार पर अन्य लोगों से अपने आप को वरिष्ठ मानते थे, सॉरी अन्य लोगों को अपने आप से वरिष्ठ मानते थे इस प्रकार से। तो ये प्रभु रामचंद्र की नम्रता थी। तो मैं अगर मेरे भक्ति में जीवन में देखूं तो ये तीन निकषों के आधार पर ये इसमें कुछ संदेह नहीं है कि सभी भक्त मेरे से वरिष्ठ है, है कि नहीं? कुछ भक्त हमसे आयु में बड़े हो सकते हैं, कुछ भक्त हम में जिम्मेदारी या जो सेवा करते उसके लिए बड़े हो सकते हैं, और कुछ भक्त आप देखेंगे कि शायद हम भक्ति में आने के बाद 10, 15, 20 वर्षों के बाद वो आए हैं, मगर उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो तीव्रता है, उनकी जो प्रामाणिकता है, वो देख के हमें भी संकोच हो जाता है कि ये कितने भक्ति में प्रगतिशील है। अभी हम ये थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या शास्त्र हमें भ्रमित करते हैं। अभी अभी हमने चतुर्थ स्कंध में पृथु महाराज के जीवन चरित्र के बारे में सुना, तो पृथु महाराज के जो फलश्रुति है कि पृथु महाराज की कथा सुनेगा तो उस व्यक्ति को क्या क्या मिलेगा, उसमें ये श्लोक आता है, चौथा स्कंध 23वां अध्याय श्लोक संख्या 35। उसमें वो कहते हैं कि अगर कोई पृथ्वी महाराज का लीला कथा श्रवण करता है तो उसकी आयु बढ़ती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कलयुग के सभी प्रभावों से वो विमुक्त हो जाता है, शायद कोरोना से भी विमुक्त हो जाएगा। फिर वो कहते हैं किसी को अगर धर्म, अर्थ, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति चाहिए तो उन्होंने पृथ्वी महाराज की लीला कथा सुननी चाहिए, ठीक है, और उससे भी कुछ और लाभ चाहिए, नित्य रूप से चाहिए इंद्र तृप्ति, तो क्या कीजिए आप, पृथु महाराज की कथा रोज सुनिए। कहां पर लिखा है? श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जो धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो है कि नहीं। फिर दो श्लोकों के आगे उसी अध्याय में 38 नाम का श्लोक है, 38 नंबर का श्लोक है, उसमें मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, मुझे जितना शक्य था, जितना मेरी शक्ति थी, उतनी पूरी शक्ति से मैंने पृथु महाराज का वर्णन आपको किया है, ठीक है। अगर कोई ये पृथु महाराज की कथा सुनेगा तो उसका भक्ति भाव बढ़ेगा, ये पृथु महाराज की कथा अगर कोई श्रवण करता है तो वो भगवत धाम चला जाएगा, गोलोक वृंदावन चला जाएगा, जैसे पृथु महाराज चले गए। तो भी प्रश्न उठता है, पृथु महाराज की कथा इंद्रिय तृप्ति के लिए सुननी चाहिए या पृथु महाराज की कथा भगवत धाम जाने के लिए सुननी चाहिए? क्या शास्त्र हमें यहां पर भ्रमित कर रहे हैं? तो खास करकर जब भी हम रामायण या आदि ग्रंथों की चर्चा करते हैं, रामायण या महाभारत, हालांकि वे इतिहास है और उनमें धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के बारे में बहुत लंबी चर्चा हो रही है, मगर शास्त्र का ये कमतरता नहीं है, ये शास्त्र की कमियां नहीं है कि वो इंद्रिय तृप्ति चाहने वाले लोगों को इंद्रिय तृप्ति दे देते हैं और जिसको शुद्ध भक्ति चाहिए उसको शुद्ध भक्ति दे देते हैं। ये तो शास्त्र की महानता है कि अगर कोई आत्मा पुण्यात्मा बनना चाहता है, अगर कोई आत्मा वेदों और शास्त्रों का क्या कहेंगे मार्गदर्शन लेते हुए, अनुगमन करते हुए, उनके निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहता है, तो ये शास्त्र की महानता है कि चाहे कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहे या चाहे कोई भगवत धाम जाना चाहे, वही एक शास्त्र सभी के लिए पर्याप्त है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि रामायण जो है, ये रामायण में अगर आप अधिकतर पढ़ेंगे तो आपको एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र दिखेंगे। इसमें प्रसंग इतने रोचक रूप से वर्णन किए हैं, भावनाओं का इतना मंथन होता है, करुण रस का इतना अनुभव होता है, मगर जब निर्णय की बात आती है तब प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि धर्म क्या कहता है। और इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र हम सभी को धर्मनिष्ठ होने के लिए प्रेरित करते हैं अपने स्वयं के उदाहरण से, और वहां तक ही नहीं रखते तो हमें वो भगवत धाम तक लेके जाते हैं इस प्रकार से। तो आप अभी चालू कर सकते हैं। हमारा जो युवा प्रचार सेवा है, जो श्रीमान राधेश्याम प्रभु इतने वर्षों से बड़े अच्छे से कर रहे हैं, और उन्होंने उनके युवा प्रचार के सेवा कार्य को कहा है वैदिक ओएसिस फॉर इंस्पिरेशन कल्चर एंड एजुकेशन। तो ओएसिस यानी मराठी में उसे मरुद्यान कहते हैं, जहाँ पे पूरे चारों जगह रेगिस्तान है, मगर वहाँ पे बीच में एक बहुत अच्छा छोटा सा जलाशय है कि नहीं। तो ये जो ओएसिस है, ये जो मरुद्यान है, ये सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? तो वो हमें मुकुंदमाला स्तोत्र में मिलता है। तो मुकुंदमाला स्तोत्र जो रचे कुलशेखर महाराज, वो भी प्रभु श्री रामचंद्र के बड़े निस्सीम भक्त थे, बड़े श्रद्धावान भक्त थे। ऐसा वर्णन आता है कि रोज उनकी राजसभा में जब वे बैठते थे, तो वहां पर एक ब्राह्मण आते थे जो उनको रोज रामायण का पाठ कराते थे, और वो जब कथा सुनते थे उसमें उनका तन मन चित्त इतना आवेश में प्रवेश करते थे कि वो प्रसंग में वो चले जाते थे। तो ये ब्राह्मण को पता था कि जब भी इनके लिए कथा करना है तो जो आनंद के प्रसंग है वही बताने हैं, अगर दुख या संकट का प्रसंग हो गया तो पूरे मंत्री प्रधानमंत्री है कि नहीं, सब लोगों को इमरजेंसी आ जाता था है कि नहीं, अभी क्या करें। अगर उनको बता जाए कि दशरथ महाराज का देहांत हो गया, तो वो इतने विवल हो जाते थे कि सब लोगों को लगता था कि शायद यही दशरथ महाराज के विरह में प्राण न त्याग दे। तो होता एक दिन ऐसा है कि वो जो ब्राह्मण है उनका स्वास्थ्य खराब होता है, और वो अपने पुत्र को भेजते हैं, और पुत्र को ये पता नहीं रहता। तो पुत्र प्रसंग निकालते हैं कि रावण कैसे कपटता से सीता माता का हरण कर लेता है, और उससे कुलशेखर महाराज इतने विचलित हो जाते हैं कि वो कहते हैं चलो अभी हमें आक्रमण करना है, सब सेना को तैयार करो और हम अभी रावण पर हमला बोलेंगे। और पूरा सेना के साथ वो जाने लगते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आता किसी को, अभी इसे किसे सुलझाया जाए है कि नहीं। तो पूरा जोश से जाते हैं, बीच में समुंदर आता है, घोड़े से उतर जाते हैं और समुंदर में चलने लगते हैं तलवार ऊपर करके, और चलते 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 समुंदर का पानी उनके सर के ऊपर जाने लगता है। वहां पे स्वयं श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान अर्च विग्रह के रूप में उनको प्राप्त होते हैं, और वहां पे उन्हें संदेश दिया जाता है कि ये लीला बहुत वर्षों पहले हुई है, और अभी तो आज के लिए अगर आपको चाहिए तो सीता को प्रभु रामचंद्र ने प्राप्त कर लिया है, आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यही कुलशेखर महाराज के कृपा आशीर्वाद हम चाहते हैं कि हम भी इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र के लीला कथा में प्रवेश करते। और ये कुलशेखर महाराज भगवान को एक जलाशय के रूप में इस श्लोक में गाते हैं, करचरण सरोजे कांति मन नेत्र मीने श्रम मुषि भुजि विचि व्याकुले गाध मार्गे हरि सरसि विगाया पीय तेजो जलोगम भौम रूपरि खिन्न क्लेश मद्यत्यजामि। वो कहते हैं ये जो भौतिक संसार है ये एक रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान में सुबह दोपहर शाम हर समय बहुत ज्यादा उष्णता है, इतनी उष्णता है कि उष्णता के कारण मैं जल रहा हूं, वो ताप मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए इस ताप का मैं आज त्याग करने वाला हूं। कैसे? कर चरण सरोजे कांति मन नेत्र मीने, मैं ऐसे जलाशय में जाने वाला हूं, हरि सरसि विगा या पीय तेजो जलौघम। ये जलाशय का नाम है हरि या भगवान विष्णु। ये भगवान विष्णु रूपी जो जलाशय है उसमें मैं डूब जाऊंगा,
శ్రీ శ్రీ రాధా వృందావన చంద్ర భగవాన్ శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ సుభద్రమాయ శ్రీ శ్రీ గౌరనితాయ శల ప్రభువాదికి. ఉస్ జలాశయ మే మే డూబ్ జాఊంగా ఔర్ ఉస్ జలాశయ మే క్యా హై, భగవాన్ కే రూప్ కే తేజ్ జో హై ఉస్కా పానీ బహ రహా హై ఔర్ వో పానీ మే మన్ భర్ పీ లూంగా ఔర్ ఉస్సే క్యా హోగా, మేరీ యే జో భౌతిక్ తప్త జీవన్ కీ అగ్ని హై వో ఉస్సే శమిత్ హో జాయేగీ హమేషా కే లియే. ఔర్ ఫిర్ వో కహతే హై, యే జో హరి రూపీ జలాశయ హై ఇస్మే కమల్ కౌన్ సే హై, కర చరణ, భగవాన్ కే దో హాత్ ఔర్ భగవాన్ కే దో పైర్, యే ఇస్ జలాశయ కే కుసుమ్ హై యా కమల్ హై, ఫూల్ హై, చరణ ఔర్ కర. ఔర్ ఉన్కీ ఆంఖే క్యా హై, కాంతి మన నేత్రి, ఉన్కీ జో దో ఆంఖే హై तो आप देखेंगे हमारे सारे इंद्रियों में सबसे चपल कौन सी है, तो हमारी आंखें हैं जो हमेशा एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती है. इसलिए वो कहते हैं ये आंखें क्या है, ये आंखें मछली है उस जलाशय में विचरण करने वाली, और वो भी बड़ी विशेष है, सुनहरी है, दैदीप्यमान है, तेजोमय है. कहते हैं और इस जलाशय में जो वेव्स, ये वेव्स यानी क्या, तरंग, लहरे, तरंगे जो है, ये जो जलाशय के लहरे और तरंगे है उनको कौन जन्म दे रहा है, तो भगवान की ये जो भुजाएं भगवान इस प्रकार से हिलाते हैं कि उसके कारण इतनी तरंगे बन रही है, वो तरंगे हमेशा बनती ही रहेगी. और ये तरंगों का विशेषता क्या है, अगाध मार्गे, ये तरंगे बहुत गहरी है, ये बहुत गहरी है, अगाध, अगाध यानी आप चाहे आपका कितना भी बुद्धि लगा लो, इस तरंगों का जो खोली या जिसकी गहराई है वो आप कभी नाप नहीं पाएंगे इस प्रकार से. तो ये तरंगे है, ये जलाशय है, और जल की जो गहराई है ये क्या है, जो भक्तिमय जीवन में जब श्रवण कीर्तन ऐसे नवविधा विधि से हम भगवान की कथा लीला सुनते हैं, उसमें प्राप्त होने वाला आनंद इतना दिव्य है, इतना गहरा है, आप जब बस सिर्फ पीते रहो, श्रवण करो, श्रवण करो, कभी आपकी प्यास खत्म नहीं होगी, बढ़ते ही जाएगी, और आपकी तृप्ति भी उसके साथ बढ़ते ही जाएगी. तो ये भगवान का जलाशय है, और यही जलाशय है प्रभु श्री रामचंद्र भगवान, जिनके बारे में हम थोड़ा वाल्मीकि रामायण से सुनने का प्रयास करेंगे. तो ये रामायण महात्म्य में, एक्चुअली वी कैन कवर इट नो, अदरवाइज उसमें कुछ नोट्स हैं, आपका ध्यान बटोरा जाएगा. रामायण महात्म्य में सनक आदि ऋषि जो चतुष कुमार हैं वो नारद मुनि को मिलते हैं, और वो नारद मुनि को कहते हैं कि आप हमें बताइए कि सारे ये भवसागर को उद्धार करने वाला कुछ उपाय बताइए. और नारद मुनि उनको कहते हैं, ये कुछ श्लोक मैं यहां से वहां पर कॉपी नहीं कर पाया समय के अभाव के कारण, नारद मुनि कहते हैं, यो दैत्यहंता नरकांतकश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगुप्ता भुबार संघात विनोद कामम नमामि देवम रघुवंश दीपम. वो कहते हैं यो दैत्यहंता नरकांतकश्च, सभी दैत्यों का हनन करने के लिए जिन्होंने अवतार लिया है, नरकांतकश्च नरक का भी अंत करने वाले हैं, भुजाग्र मात्रे न च धर्म गुप्ता, भुजाग्र मात्रा यानी क्या, अगर उनको धर्म की रक्षा करनी है तो वो केवल अपनी अंगुली मात्र से कुछ निर्देशन कर देंगे तो पूरे धर्म की रक्षा हो जाएगी, उनको और कुछ कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है. और वे कैसे हैं, भुभार संघात विनोद कामम,
पृथ्वी के ऊपर अधर्म, पाप, अनाचार, ये जो भार बना है उसको निकालना ये उनका हॉबी है, उनको अच्छा लगता है, उनको खेल लगता है। क्या पृथ्वी के ऊपर अगर अधर्म अनाचार फैला है तो उसको उड़ा देना, वो उनका क्या बोलेंगे, हॉबी है, मनोरंजन है, खेल है इस प्रकार से। और कहते वो खेल खेलने के लिए भी उनको अच्छा लगता है। और कौन है वो? नमामि देवम रघुवंश दीपम, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। फिर वो कहते हैं कि ये जो प्रभु रामचंद्र है इनके लीला कथा कितने हैं, उसके बारे में वो वर्णन कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र के इतने शुद्ध भक्तों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं कि केवल वो ग्रंथों का नाम लेना हम चालू करें तो कहते हैं तेषाम नामानि संख्यातुम शक्यन्ते नाब्द कोटि भी अब्द कोटि भी, यानी अगर अरबों वर्षों के लिए भी हम सिर्फ उनके चरित्रों के नामों का अगर लिस्ट बनाए तो अरबों वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। पुस्तकों का नाम बोल रहा हूं, लीलाओं के बारे में नहीं, ठीक है। फिर वो कहते हैं रामायण की क्या महानता है, ये आप मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। रामायणेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार बोले रामायण, बोलिए रामायण, अगर हम केवल एक बार रामायण ये चार अक्षर बोल दे तो वो कहते हैं जितना सर का होलसेल अकाउंट होगा पापों का करोड़ों जन्मों का क्लियर हो जाएगा केवल बोलने से रामायण, ठीक है। और वो व्यक्ति सीधा विष्णुलोकम सगच्छति, वो विष्णुलोक में प्रवेश करेगा। तो अभी ये रामायण में हम अयोध्या कांड से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जितना भी हमें समय में हम वर्णन कर सके। तो आपको एक थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि रामायण में जब भगवान के रूपों का, गुणों का, कार्यों का वर्णन आता है तो ज्यादातर उनकी तुलना इंद्र से की गई है या बृहस्पति से की गई है, अलग अलग अन्यान्य देवताओं से की गई है। तो कोई सोचेगा अरे ये रामचंद्र भगवान है, ये स्वयं विष्णु है और इनकी तुलना उनसे क्यों की जा रही है कि नहीं, तो शायद ऐसे विचार हमारे मन में आ सकते हैं। तो आप देखिए हम जब भगवान के रूप का वर्णन करते हैं तो उनकी तुलना किससे करते हैं, कमल से करते हैं। तो क्या भगवान की सुंदरता केवल कमल के सुंदरता से ही सीमित है? नहीं है, क्योंकि हम कमल देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए कमल का उदाहरण दिया गया है। मगर भगवान की सुंदरता से कमल से तो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है। तो उसी प्रकार जब हम ये रामायण में भगवान की सुंदरता या गुणों का वर्णन सुनेंगे तो शायद हमारा फिलोसॉफिकल माइंड है कि नहीं, तत्वज्ञानी मन बीच में अपना सर बाहर निकाल सकता है, अरे ये क्या है, वो विष्णु है, उनका वर्णन किधर हो रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी जब रस शास्त्र हम सुनते हैं उसमें ज्यादा तर्क शास्त्र या तत्वज्ञान नहीं डालना चाहिए, अगर डालेंगे तो रसा भास हो जाएगा, ठीक है। तो ये केवल इसलिए बता रहा हूं जिससे हम इसे और अच्छे से समझ पाए और उसका आस्वादन ले पाए। तो अयोध्या कांड में पहले तीन सर्गों के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे जितना भी समय हमें प्राप्त है। तो अयोध्या कांड में पहला जो सर्ग है उसमें दशरथ महाराज अभी विचार कर रहे हैं कि हम प्रभु श्री रामचंद्र को राज्याभिषेक करेंगे, उनको युवराज बना देंगे, बाद में वर्णन आता है प्रभु रामचंद्र के दिव्य गुणों का। तो हालांकि दशरथ महाराज राजा थे, कुछ भी कर सकते थे, उनका वर्णन आता है कि हजारों हजारों वर्षों के लिए पूरे सृष्टि के ऊपर उन्होंने अनभिक्षित राजा थे, उनके साथ दूसरा कोई स्पर्धा नहीं कर पाया, मगर फिर भी वो क्या करते हैं, अपने सभी मंत्रियों को बुलाते हैं, फिर उनके साथ जो कार्य करने वाले उनके नीचे अलग अलग राजा है उनको भी बुलाते हैं, सबको न्योता दिया जाता है और पूरा राजमहल भरा हुआ है। ठीक है, वहां पे सब राजा मंत्री बैठे हैं और दशरथ महाराज का इच्छा है कि ये मेरे मन में इच्छा है, मगर मैं ये सभी को बताऊंगा और देखते हैं उनकी क्या इच्छा है। इस प्रकार से तो वर्णन आता है कि अगर जैसे भगवान विष्णु की चार भुजा है तो चारों भुजा विशेष है, शुद्ध है, पावन है, पूरी शक्ति से ओतप्रोत है, उसी प्रकार दशरथ महाराज को अपने चारों पुत्रों के ऊपर विशेष गर्व था, मगर ये चारों पुत्रों में भी एक ऐसा पुत्र था जिनका वर्णन आता है, तेषामपि महातेजा रामो रति कर पितु स्वयं भूर इव भूतानाम बभूव गुणवत्तर। वो कहते हैं ये चारों में भी एक महातेज थे और वो कौन थे, प्रभु रामचंद्र। उनके व्यक्तिमत्व में इतने गुण थे, इतनी महानता थी, इतने आकर्षक थे कि सारे जीव मात्राओं को जैसे ब्रह्मदेव से आकर्षण होता है, वैसा आकर्षण दशरथ महाराज को अपने पुत्र के प्रति होता था। फिर श्लोक संख्या 18 में वो कहते हैं उनका शरीर निरोग था, तो किनका, ये सब वर्णन अभी प्रभु रामचंद्र का है, उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण थी, वे अच्छे वक्ता थे, सुंदर शरीर से सुशोभित थे और देश काल के तत्व को समझने वाले थे। अभी बोल बोल कर कितना बताए, इतना ही बोल सकते हैं कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार गुणों को इकट्ठा कर लिया, समस्त पुरुषों के सार अच्छे गुणों को इकट्ठा कर लिया और सबसे अच्छा साधु कौन बनाना चाहिए ये मन में विचार आ गया और बस प्रभु रामचंद्र को बना दिया। राजकुमार श्रीराम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे, वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों के लिए बाहर विचरने वाला जो प्राण वायु है वो जैसा हम में से हर एक के लिए बड़ा आवश्यक लगता है कि नहीं। ऐसा वर्णन आता है कि कुछ कुछ व्याधियों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है ना, और फिर सांस का शायद महत्व पता होता होगा। तो एक व्यक्ति के लिए सांस के लिए क्या मुश्किल है, जब उसे सांस लेने के लिए मुश्किल हो जाता है तो उसे सांस का मूल्य पता चलता है, वही मूल्य सारी प्रजा को प्रभु रामचंद्र के लिए था। तो जैसा हम में से कोई हर क्षण बिना सांस के नहीं रह सकते, वैसे सारी प्रजा प्रभु रामचंद्र के बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती। ठीक है, ठीक है, ये प्रभु रामचंद्र के गुण हैं। कौन बोल रहे हैं, दशरथ महाराज बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं, अपने सारे मंत्रियों को और सारे राजाओं को बोल रहे हैं। इतना सारा वर्णन है तो मुझे कुछ श्लोक चुनने पड़ रहे हैं क्योंकि समय के अभाव से, नहीं तो हम यहाँ 5-6 घंटे भी बैठे तो कम होगा, इतना इसका वर्णन है। संग्राम में कुपित होकर अगर देवता और असुर दोनों बोले कि हम साथ में लड़ाई करेंगे, ठीक है, अगर देवता और असुर बोलेंगे कि हम एक ही टीम में रहेंगे और युद्ध किससे करेंगे, रामचंद्र से करेंगे, तो दोनों भी अगर साथ में आके रामचंद्र के सामने खड़े हो गए, रह नहीं पाएंगे, उधर ही उनका विनाश हो जाएगा। वही रामचंद्र के कुछ दिव्य गुण सुनिए, किसी भी प्राणी के मारे में उनके मन में अवहेलना के भाव नहीं थे। काल के वश में होकर काल के पीछे पीछे वो चलते नहीं थे, काल उनके पीछे पीछे चलता था। वो अपने क्षमा में इतने उदार थे, लोगों को क्षमा कर दे कि ऐसा वर्णन आता है कि पृथ्वी भी उनके पीछे कम पड़ जाएगी, इतने वो क्षमाशील थे। बुद्धि में वो बृहस्पति के जैसे थे और बलक पराक्रम में वो इंद्र के समान थे। फिर वर्णन आता है, ये तो वर्णन रामायण का जनरल वर्णन है, कि इतने सदाचारी, इतने महान स्वयं विष्णु प्रकट हो गए हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के भी मन में इच्छा हो गई। क्या इच्छा हो गई? कि रामचंद्र ही मेरे स्वामी होने चाहिए। सॉरी, मेरे थोड़े क्रम में बदल हो गया। ये इच्छा पहले पृथ्वी के मन में आती है कि प्रभु रामचंद्र मेरे स्वामी बनने चाहिए, और फिर वो पृथ्वी प्रेरणा देती है दशरथ महाराज को, और दशरथ महाराज कहते कि अभी बहुत हो गया, अपना समय आ गया, अभी रिटायर हो जाए और प्रभु रामचंद्र को युवराज बना। और उसके बाद दशरथ महाराज बोलने लगते हैं। तो यह है द्वितीय सर्ग, जहां पर दशरथ महाराज अपनी भावनाओं के बारे में अपने राजा और मंत्रियों को बता रहे हैं। तो जैसे परसों अनंत गोप्र वो बता रहे थे थिंकिंग फीलिंग विलिंग, है ना, तो ये कुछ हद तक आप यहां पर भी देख सकते हैं कि अभी तक ये भावनाएं थी, हम जो चर्चा कर रहे थे ये दशरथ महाराज के मन की भावनाएं थी, वो अभी तक बोले नहीं है, तो वो मन में विचार कर रहे, विचार आ रहे, सिर्फ विचार, ठीक है। फिर वो बोले कि अरे विचार तो अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा व्यक्त करें। तो जब विचार व्यक्ति प्रकट करता है तो वो भावना हो जाती है ना, तो अभी वो प्रकट करने वाले हैं, तो वो भावना यहां पर आने वाली। तो वो कहने लगते हैं सारे अपने मंत्रिमंडल को, सारे राजाओं को, कि देखिए ये जो वंश आया है इक्ष्वाकु वंश, इसमें हम सभी राजाओं ने एक कार्य किया है। क्या कार्य किया है? कि राज्य का संभाल ऐसा किया है कि जैसा मानो राज्य हमारा अपना स्वयं का पुत्र है, इस प्रकार से। और उसी का अनुसरण मैंने भी किया है। पूरा जीवन, आयु बीत गई और अभी मैं 60,000 वर्षों का हुआ हूं, तो अभी मुझ में वो शक्ति नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि मैं मेरे पुत्र राम को युवराज बनाऊं। और फिर वो अपने पुत्र का वर्णन कैसे करते हैं, बड़ा ही रोचक है। क्योंकि ज्यादातर हम देखेंगे कि सामान्य लोगों के जीवन में और आज के तात्पर्य में, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि अगर अभी हम शुद्ध भक्त अगर नहीं है, तो भक्तों के हृदय में भी ईर्ष्या, स्पर्धा या असुरक्षितता का भाव हम देखते हैं। मगर यहां पर दशरथ महाराज कुछ अलग ही व्यवहार कर रहे हैं। वो कहते हैं, मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रु की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बलक पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। तो बड़े खुश हैं, ऐसा नहीं कि अरे अभी रिटायर होना पड़ेगा, है कि नहीं, अभी चला जाएगा राजगद्दी। हाँ, इस चीज का वो नाटक करते हैं, उनके हृदय में ये भाव कभी आते नहीं। फिर वो बोलते हैं, यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे मन में आ रहा है और ये भावना मैं व्यक्त कर रहा हूं, मगर पहला हो गया विचार, दूसरी हो गई भावना, तीसरा क्या है, विलिंग। विलिंग यानी कुछ कार्य करने के लिए उद्युक्त होना, है कि नहीं, इस प्रकार से। पहली हो गई विचार, दूसरा हो गया भावना, अभी कार्य करना है या नहीं। वो जब निर्णय व्यक्ति ले लेता है तो उस समय लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। इसीलिए उपदेशामृत में आप देखेंगे कि श्रील रूप गोस्वामी जो पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम, उसमें वो कहते हैं कि इंद्रिय वेग क्या है और मन वेग क्या है, तो वो कहते कि मन वेग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम मन वेग के ऊपर नियंत्रण कर ले तो इंद्रिय वेग बहुत आसान है। और वो मनोवेग क्या है, हम ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग, ऐसे वातावरण में जाए ही नहीं जहां पे पाप करने की इच्छा प्रवृत्त हो सकती है। तो इसे मनोवेग कहा गया है कि पहले उसे क्या कहेंगे, नियंत्रित करें। जैसे सब लोग अभी घर के बाहर जा ही नहीं रहे हैं, कि घर के बाहर जाएंगे नहीं तो शायद कोरोना का इन्फेक्शन होएगा ही नहीं है कि? मगर कोई कोई उत्साही होते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं उत्सुकता के वश, जिसे इंग्लिश में आइडल क्यूरियोसिटी कहते हैं, है कि नहीं? कितने लोग चल रहे हैं, पुलिस आए कि नहीं, डंडा मारते हैं कि नहीं, खाने के बाद पता चल रहा है कि मारा है। तो जब व्यक्ति अपने अनियंत्रित मन के कारण विचरण करने लगता है समाज में और इंद्रिय विषयों के साथ, तब उसके इंद्रियों के ऊपर आघात होता है। और वो जो इंद्रियों के ऊपर आघात होता है उसे सहन करना और नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए थिंकिंग और फीलिंग, जब विचार कर रहे हैं और जब भावना आ रही है तो उसी के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए कि मन में जो विचार आ रहे हैं, जो भावना आ रही है, ये उचित है या नहीं। और वो बुद्धि शास्त्रों के पठन से, भक्तों के संग से आएगी। इसके लिए भक्तों का संग बड़ा आवश्यक है। जब हमारा थिंकिंग फीलिंग हम शुद्ध रखेंगे तो विलिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बुद्धि निर्णय नहीं करेगी कि मैं कुछ गलत कार्य करूंगा। अगर मान लो किसी के मन में वो विचार आ गया कि मैं गलत कार्य करने वाला हूं, ये बुद्धि ने निर्णय ले लिया, तो फिर बहुत कठिन है। फिर वो व्यक्ति शायद उसके पास कितनी भी बुद्धि हो मगर वो कार्य में लग ही जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं अजामिल। अजामिल ने उस वेश्या को उस शूद्र से आलिंगन करते हुए देखा, उसने विचार किया, भावना देखी, शास्त्र पढ़े, मगर इतनी भगवान की शरणागति वो नहीं ले सके कि अपने बुद्धि के ऊपर नियंत्रण रखते हुए कार्य करने के लिए वो उद्युक्त नहीं हुए। अगर वो होते थे तो शायद उनके जीवन में ये दुर्घटना होती ही नहीं थी। मगर जब व्यक्ति मनन नियंत्रण में कमजोर हो जाता है तब उसके इंद्रियों के ऊपर आघात होता है और फिर संघर्ष बढ़ जाता है। तो ठीक है, कभी कभी वो हो सकता है, मगर जितने श्रवण कीर्तन करेंगे और भक्तों के संग में रहेंगे तो वो भी प्रेरणा मिल जाएगी कि हम इंद्रियों के को भी वश में रख लेंगे इस प्रकार से। और यही सद्गुण हमें दशरथ महाराज के जीवन में दिख रहे हैं। बोल रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र ये है, वो है, सब कुछ है, मगर फिर भी मन में शंका आ रही है, क्या ये मेरी एक पुत्र के प्रति आसक्ति है, इसलिए तो मेरे मन में विचार नहीं आ रहे, इसलिए अच्छा है कि ये सब लोगों को बताता हूं और देखते वो क्या कहते। तो वो कहते हैं, यद्यपि यह विचार मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, मगर आप सब थोड़ा विचार कीजिए और बताइए, क्या ये मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये सही में उचित है, इससे लोगों का हित होगा, या इससे भी बेहतर दूसरा कुछ रास्ता है, आप कृपा करके बताइए। क्यों? क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान लोगों से चर्चा करके अगर हम कुछ निर्णय ले तो हो सकता है कि नहीं, हो सकता नहीं बोलते, वो जरूर बोलते हैं कि ये जरूर होगा कि हम उचित ही निर्णय ले, तो कृपा करके आप बताइए कि ये मेरा विचार है, ये ठीक है या नहीं। तो वर्णन आता है, इति ब्रुवंतम मुदितः प्रत्यनंदन नृपानृपम हृष्टिमंतम महामेघम नर्दंतम नर्दंत इव बर्हिण। ऐसा बोलते हैं कि जब वर्षा का समय आ जाता है, मेघ एकत्रित हो जाते हैं और अभी वर्षा होने ही वाली है, तो जब सब मोर एकत्रित हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और केकारव करते हुए वर्षा का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार सारे मंत्री, सारा राजा लोग बोलने लगे कि महाराज आपने जो बोला है एकदम उचित है, बस प्रभु रामचंद्र का भी आप राज्याभिषेक कर ही दीजिए। हरी बोल। तो ये आनंद वो इतने उत्साह से प्रकट करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी आवाज से सारी पृथ्वी कांपने लगी है। तो दशरथ महाराज अपना मूड बदल देते हैं और कुछ कुछ लोग इसे गलत प्रकार से प्रकटीकरण करते हैं जो ठीक नहीं है। दशरथ महाराज बोलते हैं, अरे मैंने बोल दिया कि है प्रभु रामचंद्र अच्छे है, आप तो बोल रहे सीधा अभी राज्याभिषेक अभी कर दीजिए, क्यों मुझ में कुछ कमी है क्या? अभी किसी को लगेगा अरे दशरथ महाराज के मन में असुरक्षित आ गई क्या, ईर्ष्या आ गई क्या? नहीं, ये एक नेता का गुण है कि जब सब लोग हां में हां मिला रहे हैं तो वो पता करना चाहते कि हां में हां क्यों मिला रहे हैं, क्या मेरे से डरते हैं है कि नहीं, या कि भाई बोल रहे तो अभी बस यस बॉस इसलिए बोल रहे, इसलिए बोलते मुझ में क्या कमी है कि आप बोल रहे अभी रामचंद्र को अभिषेक कराओ, मैंने तो सिर्फ प्रपोजल रखा है, आप बोल सकते ठीक है देखेंगे थोड़ा ट्रेनिंग देंगे है कि नहीं, आप बोल रहे अभी कराओ क्या जरूरत है। तो इसके पीछे उनके हृदय में कुछ असुरक्षितता नहीं थी, वो मंत्रियों के हृदय में असली में क्या चल रहा है वो उगलना चाहते थे। तो फिर मंत्री लोग बताने लगते हैं और ये सब बहुत सारे श्लोक है, कम से कम 50-100 श्लोक है पिछले अध्याय में और इस अध्याय में मिलके प्रभु रामचंद्र के इतने गुणों का वर्णन है, हम कुछ महत्वपूर्ण ही लेंगे। वो कहते हैं जैसे पिता अपने प्रिय पुत्रों को रोज मिलता है कि नहीं, उनसे बात करता है, उनको बोलता है खाया क्या अच्छे से, खुश है क्या, कपड़े अच्छे हैं, ठीक ठाक है, आपको कुछ कष्ट तो नहीं है, उसी प्रकार प्रभु रामचंद्र हमारे राज्य की सारी जनताओं के साथ, सारे पुरुष, सारे परिवार, उनकी पत्नियां, उनके पुत्र, उनके बच्चे, उनकी संपत्ति, उनके सुख, उनके दुख, उनके कष्ट, उनके उत्सव, सभी इसमें प्रभु रामचंद्र हृदय से उनकी पूछताछ करते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं, उनके सुख में उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे रामचंद्र भगवान है, इनके लिए आप विलंब मत कीजिए, आप तुरंत उनका राज्याभिषेक कीजिए। फिर वो कहते हैं हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न है। तो पहले बोलते हमारा सौभाग्य है, बात में रहा नहीं जाता, बोलते आपका भी सौभाग्य है, आप भी बड़े सौभाग्यशाली है कि रामचंद्र आपके पुत्र है, मगर उसके साथ साथ आप देखिए कि ये शास्त्रों की कितनी विशेषता है, कितना संस्कृति है, कितना ऐश्वर्य है, कितना भावनाओं के साथ संवेदनशीलता रखी जा रही है कि रामचंद्र को बोलते हैं कि आपके सौभाग्य से रामचंद्र मिले, मगर वो रामचंद्र कैसे हैं? मरीचि नंदन कश्यप, यानी मरीचि के पुत्र कश्यप है, तो मरीचि छोटे हैं क्या? मरीचि भी महान है, तो कह रहे आप भी महान है, ऐसा नहीं है कि केवल रामचंद्र ही महान है, आप भी महान है, रामचंद्र भी महान है, आप दोनों महान है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब तत्व ज्ञान हृदय में प्रवेश करता है और एक भक्त प्रामाणिक भक्ति करने के लिए प्रेरित होता है तो अच्छे वैष्णव के गुण, अच्छे वैष्णव की संस्कृति उसे अलग से विकसित नहीं करनी पड़ती, उसे समझ में आता है कि भक्त ही मेरा ऑक्सीजन मास्क है, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन मास्क चले या ना चले, मगर भक्तों के संग में अगर मैं रहूंगा तो अज्ञान से दूर रहूंगा, भक्ति के शास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण रहूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। इसलिए हमारे शरीर और मन को कितना अच्छा लग रहा है या शरीर और मन के ऊपर क्या आक्रमण हो रहा है, इससे अच्छा है एक भक्त आत्मा को क्या आनंद दे रहा है इसका खोज करे, उसका ज्ञान प्राप्त करे और उसकी अभिलाषा अपने जीवन में रखे, और उसके लिए जब वो प्राप्त करेगा तो कल जैसे श्रीमान राधेश्याम प्रभु कह रहे थे कि व्यक्ति जब इंद्रिय और मन के नियम और भगवान की भक्ति से जीवन में समाधान को प्राप्त कर लेता है, तो उसे कुछ असुरक्षितता, कुछ ईर्ष्या या कुछ पाप कार्य करने के लिए कोई सा भी प्रेरणा नहीं रहता। फिर वो कहते हैं, देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों, नागों, ये सब लोगों में, फिर हमारे राज्य की पूरी प्रजा, बड़े बड़े लोग, आने जाने लोग, सबके मन में एक ही इच्छा है कि प्रभु रामचंद्र का भी राज्याभिषेक हो जाए। फिर बोलते हैं, इस नगर की बूढ़ी और युवतियां रोज सुबह शाम मंदिर में चक्कर लगा रही है, सब मंदिरों में सभी देवताओं को प्रार्थना कर रही है कि प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक हो जाए, और उसके बाद में उनसे रहा नहीं जाता, कही देते हैं, तम देव देवोपमात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टं हिताय नक्षिप्रमुजारचुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमर्हसि। अतः हे वरददायक महाराज, आप देवादि देव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसी में हम लोगों का हित है। तो ये सब जो चर्चा हो रही है, तो ये कुशलता है दशरथ महाराज की, और ये प्रेम और विश्वास का संबंध है एक नेता और उनके प्रजा के बीच में, कि वो पूछ रहे हैं क्या ये विचार ठीक है, और विचार ठीक है तो सब लोग अनुमोदन कर रहे हैं कि हाँ आप कर लीजिए इस प्रकार से। और अभी तीसरा अध्याय हम थोड़ा जितना भी हो सकता है 1-5 मिनट के लिए लेंगे। तृतीय सर्ग आता है विलिंग, कि अभी कार्य करने के लिए दशरथ महाराज उद्युक्त हो जाते हैं। दशरथ महाराज वशिष्ठ ऋषि और वामदेव जो उनके प्रधान पुरोहित है, जो उनके गुरु वर्ग है, उनको बोलते हैं कि भगवान आप कृपा करके अभी रामचंद्र के राज्याभिषेक की तैयारी अभी से चालू कीजिए, कल सुबह ही उनका राज्याभिषेक हम करेंगे। और तुरंत वशिष्ठ ऋषि और वामदेव बड़े उत्साह से, वहां पे महाराज के पास ही कितने सारे सेवक थे, केवल आज्ञा लेने के लिए कि अभी क्या करना है कि नहीं, सर स्वामी बताइए कि हम क्या करें। तो उनको बोलते हैं सभी सेवकों को, तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियां, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खीर, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमरी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए व्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान दैदीप्यमान, सोने के बने हुए 100 सुवर्ण कलश, सुवर्ण से मढ़ा हुआ, जिसके सिंह सुवर्ण से मढ़े हुए हैं, वो यहां पे थोड़ा अलग है, सांड, यानी सांड भी एक पवित्र है, यहां पे हम देख सकते मेल का बुल, समूचा व्याघ्र चम्र तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं है, उन सबको एकत्र करो और प्रातः काल महाराज की अग्नि शाला में पहुंचा दो। फिर कहते हैं, अंतपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो, और वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित करे, दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार करो जो कम से कम 1,00,000 ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। किचन डिपार्टमेंट के लिए चलेंगे। कल प्रातः काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करें, साथ ही घी, दही, खीर और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दे। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। नगर में सब और पताकाएं फहराई जाए तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए, समस्त ताल जीवी यानी संगीत शास्त्र जानने वाले पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं यानी नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा में पहुंचाकर खड़ी रहे। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता है उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबी तलवार लिए वो गोधा चार्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर शुद्ध पवित्र और उत्साह बुद्धि एकाग्रता तीक्ष्णता ध्यान सारी कुशलता लिए हुए महान बलशाली योद्धाओं को महाराज के आंगन में प्रवेश करके रखी। ये सब होने के बाद दशरथ महाराज को बोलते हैं, सब तैयारियां हो गई है महाराज, अभी आगे बताइए क्या करना है। तो महाराज दशरथ तुरंत सुमंत्र को बोलते हैं कि आप तुरंत जाइए और उस पुरुष शिरोमणि रामचंद्र को यहां पर लेके आइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और फिर एक श्लोक का वर्णन है, देखते अगर हम वो दिखा सकते हैं तो। एक दो मिनट में आएगा, तब तक उसका पहले का थोड़ा बताते हैं। आ गए, वेरी गुड। तो आप ये श्लोका गाने का प्रयास कीजिए, बड़ा सुंदर ही श्लोक है, साथ में गाएंगे। दीर्घ बाहुम महासत्वम मत्तमातंगामिनम चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपोदार्य गुणै पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम घर्माभितप्ता पर्जन्यम लादयन्तम इव प्रजा। वर्णन है देखिए कि अभी प्रभु रामचंद्र आ रहे हैं, रामचंद्र आ रहे हैं और वो पथमार्ग के ऊपर दृष्टि बिठाए बैठे हैं दशरथ महाराज, और वो देख रहे हैं। क्या वर्णन है प्रभु रामचंद्र के रूप का, अंग विशेषों का। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर रहे थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद आह्लाद देते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र वहां प्रवेश करते हैं। थोड़े एक दो श्लोकों का सिर्फ अनुवाद आपके लिए पढ़ता हूं और अपने मन में वो प्रसंग प्रकट होगा। आते हुए श्री रामचंद्र को एक टक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं हो रही थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए थे। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए, दशरथ महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। और देखिए अभी श्री राम की विनम्रता। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम कर रहे और बोल रहे कि ये राम आया है। इस प्रकार से वैष्णव संस्कृति है। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को अपने पुत्र को पास खींचा और अपने छाती से आलिंगन कर लिया। उस समय राजा ने उन रामचंद्र जी को मणि जड़ित सुवर्ण से भूषित एक सुंदर सिंहासन सिंहासन पर बैठने के लिए आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया था, और उसका अभी क्या बोलेंगे, पिनेकल, क्लाइमैक्स। दशरथ महाराज कितने आनंदित है। ऐसे कहा है, तम पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम् अलंकृतम् इवा आत्मानं दर्श तलसंस्थितम्। इसका अर्थ है कि जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत व्यक्ति अगर अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर जैसा प्रसन्न होता है, उस प्रकार से दशरथ महाराज उस सुवर्ण से जड़ित, मणियों से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए रामचंद्र को जब देख रहे, तो ऐसा देख रहे कि जैसे वो उन्हीं का प्रतिबिंब है, पुत्र तो उन्हीं का है ना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला और भगवान के कार्यकलाप एक ओएसिस है, एक मरुद्यान है। अगर उसमें हम हमारे इंद्रिय, मन, चित्त इसको निवेश कर दे, तो ये भौतिक संसार हमें विचलित नहीं करेगा और उससे हम पूरी तरह से विशुद्ध हो जाए। तो वही कुलशेखर महाराज का एक श्लोक अंतिम हम गाकर आज के प्रवचन को यहां विराम देंगे। तो कुलशेखर महाराज कह रहे थे, हम साथ में गाने का प्रयास करेंगे। ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततम् व्यवस्थितम् समाहितानाम् सतता भयप्रदम् ते यान्ति सिद्धिम् परमाम् तु वैष्णवीम्। तो जिस प्रकार से दशरथ महाराज ने वो सोनों से भूषित, मणियों से जटित सिंहासनों पर रामचंद्र को विराजित किया, उसी प्रकार से यहाँ पे कुलशेखर महाराज कहते हैं, ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमव्ययम् हृत्पद्म मध्ये सततम् व्यवस्थितम्। हमारे हृदय में भी एक कमल है और कमल का सिंहासन है, और उस हृदय के कमल के सिंहासन के ऊपर हमें